आरव इस वक्त हॉस्पिटल में गौरवी जी के रूम में मौजूद था। उन्हें होश आ चुका था। रूम में गौरवी जी के अलावा आरव और आयु थे। सब कुछ आयु पर छोड़कर आरव वहां से जाने लगा। तभी आयु ने उसे पीछे से आवाज लगाकर कहा, कैन यू डू मी अ फेवर। आयु की बात सुनकर आरव ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और हैरानी से देखने लगा। उसने आयु के मुंह से जो भी सुना था उसे पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। कन्फर्म करने के लिए आरव ने एक बार फिर पूछा, मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं, तुमने मुझसे फेवर मांगा है? फेवर ही मांगा है, इतना हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी हेल्प करनी है तो नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, बाद में मुझे इसके लिए एहसान नहीं जताओगे। आयु ने आंखें घुमाकर कहा, ऐसा नहीं है कि पहले मुझसे किसी ने फेवर नहीं मांगा था, लेकिन मुझे तुमसे इसकी उम्मीद नहीं थी। चलो बताओ क्या चाहिए तुम्हें। जान को छोड़कर कुछ भी मांग सकती हो, क्योंकि आरव खुराने की जान इतनी सस्ती नहीं है। आरव ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा, तुम नहीं सुधरोगे ना? मतलब तुम्हें हर वक्त अपनी तारीफ क्यों करनी होती है, जैसे दुनिया में तुम इकलौते इंसान हो और बाकी लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। छोड़ो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहां से। उसका एटीट्यूड देखकर आयु ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया और गौरवी जी के पास पढ़ने को हुई। आयु ने कुछ कदम ही आगे लिए थे कि आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुम भी तो हर छोटी बात के लिए मुझ पर बेवजह गुस्सा करती रहती हो, ये तुम्हारे नेचर में है, इसलिए मैं कंप्लेन नहीं करता, तो तुम भी मेरे बिहेवियर को जज मत करो। चलो अब बताओ क्या चाहिए। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और अपना हाथ उसके हाथ से अलग करते हुए कहा, ओके फाइन, मुझे उस दिन तुम्हारी गाड़ी खराब नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पिछले 20 दिनों से मैं सजा भुगत रही हूँ। डॉक्टर कपूर ने मुझे 3 महीने एक्स्ट्रा ड्यूटी करने के लिए कहा था। मैं तुम्हारी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है वो पे कर दूंगी, प्लीज तुम उन्हें बोलकर मेरी पनिशमेंट हटवा दो। बस इतनी सी बात? आरव ने भौंए चढ़ाकर कहा, मुझे लगा क्या मांगने वाली हो। अगर तुम्हें याद हो तो मैं पहले ही इस बारे में बात कर चुका था, लेकिन तुम्हें कुछ ज्यादा ही शौक है मेरे ऑपोजिट जाने का। तुमने ही जिद की थी कि तुम एक्स्ट्रा ड्यूटी करोगी। हाँ जानती हूँ, मैंने ही जिद की थी, पर तब मैं बिल्कुल ठीक थी। अब मेरी, बोलते हुए आयु रुक गई। वो आरव से अपनी हेल्थ के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। आयु के रुकते ही आरव ने उसके बात को कंप्लीट करते हुए कहा, अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तुम्हें कैसे पता? आयु ने हैरानी से पूछा। जब तुमने अयान को कॉल किया था उस वक्त मैं उसके पास ही था। खैर छोड़ा इन सबको, मैं डॉक्टर कपूर से बात करके तुम्हारी पनिशमेंट कैंसिल करवा दूंगा, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। तुम बच्ची नहीं हो, इतनी समझ होनी चाहिए कि किसी को जानबूझकर नुकसान ना पहुंचाओ, आरव ने उसे समझाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आयु ने सार्कास्टिक वे में सिर हिला दिया और फिर खुद से बड़बड़ाकर कहा, बोल भी कौन रहा है, जिसकी सारी हरकतें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए होती हैं। आरव को उसकी बात सुनाई नहीं दी तो उसने पूछा, तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं, बोलकर आयु कुछ पल रुकी और फिर आगे कहा, थैंक यू सो मच, इसकी जरूरत नहीं है, बस दादी का ध्यान रखना और अपना भी, कहकर आरव बाहर चला गया। उसके जाते ही आयु ने गौरवी जी की तरफ देखा तो उनकी आंखें खुली थीं और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ था कि वो उनकी सारी बातें सुन चुकी थीं। क्या आपने सब सुन लिया? आयु ने हिचकिचाते हुए पूछा। गौरवी जी ने बिना कुछ कहे हां में पलकें झपकाईं। आयु ने फिर बात को संभालते हुए कहा, मैंने उसकी गाड़ी जानबूझकर खराब नहीं की थी, गलती से स्कूटी से स्क्रैच लग गया था। अपनी बात खत्म करने के बाद आयु ने अजीब सा चेहरा बनाया और फिर कहा, ठीक है मैं झूठ नहीं बोलूंगी, झूठ बोलना सिली होगा। मैंने उसकी गाड़ी जानबूझकर खराब की थी बिकॉज उसने भी मेरा कुछ नुकसान किया था, तो मुझे बदला लेना था। शायद उसने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन फिर उसने हॉस्पिटल में हंगामा मचा दिया था। बहुत मुश्किल से मैंने उससे पीछा छुड़ाया था, लेकिन पता नहीं उसे कैसे पता चल गया कि मैंने ही उसकी गाड़ी खराब की थी। मैं उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार थी, पर फिर भी वो नहीं मान रहा था। आपको पता है मुझे इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई? मिस्टर कपूर ने मुझे पूरे 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा ड्यूटी करने की पनिशमेंट दी, वो भी जनरल वार्ड में। आयु की बातें सुनकर गौरवी जी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उनकी नजरें आयु की आंखों पर थीं, तो वहीं उसे पता नहीं चला कि कब कबीर भी रूम में आ गया था। वो दीवार से टिककर आयु की बातें सुन रहा था। अच्छा, वैसे तुमने बताया नहीं कि उन्होंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है, जिसका बदला लेने के लिए उस दिन तुमने उनकी गाड़ी खराब कर दी? जैसे ही कबीर ने कहा, आयु ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। तुम कब आए और हमारी बातें क्यों सुन रहे थे? अब जाकर सब कुछ अपने बॉस को मत बता देना, वरना वो फिर से मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगा, आयु ने मुंह बनाकर कहा। आपको ये क्यों लगता है कि वो किसी को तंग करते हैं? हमें तो ये कभी नहीं लगा, है ना दादी? बोलते हुए कबीर गौरवी जी के पास आ गया। फिर उसने गौरवी जी की तरफ देखा और कहा, दादी अपने डॉक्टर की आंखें नोटिस की क्या? आयु ने हैरानी से पूछा। गौरवी जी ने पलके झपका कर हामी भरी तो कबीर ने कहा, योर आईज आर सो ब्यूटिफुल डॉक्टर। वो सब आपस में बातें कर रहे थे तभी आरव भी वहां पहुंच चुका था। अंदर आते ही आरव ने आयु से कहा, तुम्हारा काम हो गया है डॉक्टर, अब तुम्हें एक्स्ट्रा शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, चाहे तो अभी घर जा सकती हो। नहीं, आज की शिफ्ट पूरी करके ही घर जाऊंगी, आयु ने जवाब दिया। आरव के आने से कबीर की बात से आयु का ध्यान हट गया था। गौरवी जी ने कबीर को इशारे से फिर से वही बात कहने को कहा। कबीर ने आयु से वापस कहा, डॉक्टर आपकी आईज का कलर काफी डिफरेंट है, दादी ये लाइट एम्बर आईज है ना? हाँ, गौरवी जी ने धीमी आवाज में इतना ही कहा। हाँ ये वही है, पर तुम कब से मेरी आंखों के पीछे क्यों पड़े हो? पिछले 5 मिनट से तुम मेरी आंखों का गुणगान किए जा रहे हो, उसका कोई कारण है क्या? आयु ने उसे डांटते हुए कहा। हाँ कारण तो है, इस कलर में एक बात है और कुछ लोगों को कुछ खास ही पसंद है, जैसे ही कबीर ने कहा। आरव को याद आया कि उसने गौरवी जी को अपनी पसंद बताते टाइम क्या कहा था। ये वो बिल्कुल नहीं है, आरव जल्दी से बोला। कौन, तुम सब मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या? आयु उनकी बातों में उलझ कर रह गई थी। खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो डॉक्टर, ये हमारी पर्सनल टॉक्स है, नाउ लीव, दादी का ख्याल रखने के लिए हम सब हैं यहाँ पर, आरव ने थोड़े रूड तरीके से कहा। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और बाहर जाने लगी। उसे आरव का इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाहर जाते हुए आयु खुद से बड़बड़ाकर बोली, पता नहीं इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है, कभी खुद इतना करीब आ जाता है तो कभी रूडली बात करके दूर भेज देता है। जो भी हो आयु, तुझे अपना मकसद बिल्कुल नहीं भूलना है, ये रूट रहे या अच्छे से, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आयु अपने ही धुन में खोई हुई चल रही थी तभी वो सामने से आ रहे मंथन से टकरा गई। उसके साथ व्हीलचेयर पर साक्षी भी थी। सो, आयु ने बिना मंथन की तरफ देखकर कहा, लेकिन जैसे ही उसने मंथन की तरफ देखा उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। वो उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। मैं जानबूझकर नहीं टकराई, मेरा ध्यान कहीं और था। हाँ, तुम्हारा ध्यान अक्सर कहीं और ही रहता है और तुम गड़बड़ कर देती हो, मंथन ने हमेशा की तरह काफी रूखे तरीके से जवाब दिया।
ऐसा नहीं है, आयु बोली। उसने मंथन से बहस करने के बजाय साक्षी की तरफ देखकर कहा, आपको डिस्चार्ज मिल रहा है दी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आपको अपनी हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो प्लीज मुझे, आयु बोल रही थी तभी मंथन ने उसकी बात बीच में काटकर कहा, तुम्हें कॉल बिल्कुल नहीं करेंगे, याद है ना सर्जरी से पहले डॉक्टर आयान ने कैसे तुम्हें अंदर नहीं आने दिया था? वो तुम्हारी सीनियर है तो तुम्हें हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, उस एक्सपीरियंस की बात तो तुमसे ट्रीटमेंट लेने में डर लगेगा। मंथन के आयु से रूखे तरीके से बात करने पर साक्षी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे आंखें दिखाते हुए कहा, बस भी करो मंथन, कल आरव की दादी की सर्जरी आयु ने अकेले ही की थी और वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से, हॉस्पिटल में हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है, उसके बाद आयु की काबिलियत पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। मंथन ने जिस तरह से आयु से बात की थी उसे उस भी बहुत गुस्सा आया था। वो उसकी तरफ आंखों में आंखें डालकर घूर कर देख रही थी तो वहीं उसकी आंखें मंथन को अनु की याद दिला रही थी। अपनी आईज नीचे करो, आई हेट योर आईज, मंथन ने सख्त लहजे में कहा। नो यू डोंट हेट माई आईज, इन फैक्ट यू कांट, मेरी आंखें तुम्हें अनु की याद दिलाती हैं, बस यही सोचकर तुम मुझसे दूर भाग रहे हो ना? बोलते हुए आयु मंथन के थोड़ा करीब आ गई, वो भी काफी गुस्से में थी। जब सब सच पता है तो अपनी ये घटिया शक्ल लेकर मेरे सामने से निकल क्यों नहीं जाती? आयु ने मंथन के गुस्से को 7वें आसमान पर ला दिया था। वो उस पर इतने जोर से चिल्लाया कि आसपास के लोगों का ध्यान भी उस तरफ अट्रैक्ट हो गया। अपनी बात कहकर मंथन साक्षी को नर्स के साथ वहीं छोड़कर चला गया, जबकि आयु हैरानी से वहां पर खड़ी होकर उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना उसकी गलती के मंथन उसे इतनी नफरत क्यों करता है। उसकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा परेशान है और उसकी परेशानी का कारण तुम जानती हो। मंथन के जाने के बाद साक्षी ने आयु से सॉरी कहा। उसकी आवाज़ सुनकर आयु का ध्यान टूटा, उसने साक्षी की बात पर हामी भरी और वहां से चली गई। आयु की आंखों में आंसू थे, थोड़ी देर पहले आरव ने भी उससे रूखे तरीके से बात की थी तो अब मंथन ने तो हद ही पार कर दी थी। ये सब लड़के एक जैसे होते हैं, इन्हें बस हर्ट करना आता है। मैंने कहा था आयान से सबके सामने मुझे ओटी से बाहर मत निकालो, क्या मैं इतनी बुरी डॉक्टर हूँ कि लोग मेरी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं? उस दिन आरव भी मुझे ओटी से बाहर निकालने की बात कर रहा था, सीरियसली? उन सबकी बातों से आयु काफ़ी हर्ट हुई थी इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रोते हुए वो हल्की से जेंट्स टॉयलेट में चली गई। वहीं रेस्टरूम में आरव के अलावा और कोई नहीं था और वो रेस्टरूम यूज भी कर रहा था। जैसे ही आयु और आरव की नजरें एक दूसरे से टकराईं, वो दोनों चिल्लाते हुए एक दूसरे से पीट करके खड़े हो गए।